चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय एक पैर संख्या 240 से लेकर 259। तो बोर्ड पर 259 है, तो उससे पहले मैं पढ़ता हूं। लीला स्थल देखी प्रेमे हैला अस्थिर बलभद्र कैल तारे मथुरा बाहिर। श्री कृष्ण की 12 लीला स्थलीय देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश के कारण अत्यधिक विवल हो उठे। उन्हें बलभद्र भट्टाचार्य किसी तरह मथुरा से बाहर ले गए। तो ये जो अध्याय है जहां कृष्णदास कविराज महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएं हैं, बाद में घटित होने वाली लीलाएं, उनको संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। और अभी वो वर्णन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे वृंदावन की ओर जा रहे हैं। गंगा तीर पथि पथि लैया प्रयागे आयला श्रीरूपासी प्रभु के तथाए में लीला। मथुरा छोड़ने के बाद महाप्रभु गंगा नदी के किनारे किनारे चलने लगे और अंत में प्रयाग इलाहाबाद नामक पवित्र स्थान पर आ पहुंचे। यही पर श्रील रूप गोस्वामी आकर महाप्रभु से मिले। दंडवत करी रूप भूमि ते पड़िला परमानंदे प्रभु आलिंगन दिला। प्रयाग में रूप गोस्वामी ने आकर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन किया। श्री रूपे शिक्षा कराई पाठा इला वृंदावन आपने कर इला वारा नसी आगमन। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट आए। काशी ते प्रभु के आसी मिलेला सनातन करायला शिक्षान। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए तो वहां उनसे सनातन गोस्वामी मिले। महाप्रभु वहां 2 मास तक रहे और सनातन गोस्वामी को पूरी तरह से शिक्षा दी। मथुरा पाठाइला तारे दिया भक्ति बल सन्यासी रे कृपा करी गेला नीलाचल। सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षित करके इसे चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति की शक्ति देकर मथुरा भेज दिए। बनारस में उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर भी कृपा की। तत्पश्चात वे नीलाचल जगन्नाथपुरी लौट गए। 6 वत्सरा प्रभु करिला विलास कबो इति कबो क्षेत्रवास। महाप्रभु 6 वर्षों तक सारे भारत में भ्रमण करते रहे। वे अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करते हुए कभी इधर तो कभी उधर रहते और कभी वे जगन्नाथपुरी में रहते। आनंदे भक्त संगे सदा कीर्तन विलास जगन्नाथ दर्शन प्रेमेर विलास। जगन्नाथपुरी में रहते हुए महाप्रभु संकीर्तन करने और भाव विभोर होकर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में अपना समय प्रसन्नता पूर्वक बिताते रहे। मध्य लीला कैलये सूत्र विवरण अंत लीला सूत्र सुना भक्तगण। इस प्रकार मैंने महाप्रभु की मध्य लीला का सारांश दिया है। हे भक्तों, कृपया महाप्रभु की अंतिम लीला का सारांश सुनो जो अंत लीला कहलाती है। वृंदावन है ते जदि नीला चले अहिला 18 वर्ष तहवास कहा नहीं गेला। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर जगन्नाथपुरी आ गए तो वे वहीं पर रहे और 18 वर्ष तक कहीं नहीं गए। तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल नवदीप और 24 साल जगन्नाथपुरी, उसमें से 6 साल उन्होंने यात्राएं की दक्षिण भारत और वृंदावन की। प्रतिवर्ष आई सेना तहा गौडेरा भक्तगण 4 मास रहे प्रभु संगे सम्मिलन। इन 18 वर्षों में बंगाल के सारे भक्त प्रतिवर्ष उनसे जगन्नाथपुरी में आकर रहते रहे। वे वहां लगातार 4 महीने रहते और महाप्रभु के संग का आनंद लूटते। निरंतर नृत्य गीत कीर्तन विलास आचंडले प्रेम भक्ति करिला प्रकाश। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर कीर्तन और नृत्य करते। इस तरह उन्होंने संकीर्तन लीला के आनंद का आस्वादन किया। वे सब पर यहाँ तक कि नीच से नीच व्यक्ति पर भी अपनी आरती की कृपा अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम प्रकट करते। पंडित गोसाई कैला नीलाचले वास वक्रेश्वर दामोदर शंकर हरिदास। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वालों में पंडित गोसाई तथा अन्य भक्त तथा वक्रेश्वर दामोदर शंकर तथा हरिदास ठाकुर थे। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर परमानंद पुरी आरा स्वरूप दामोदर। महाप्रभु के साथ जो अन्य भक्त रहे थे उनके नाम थे जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर परमानंद पुरी तथा स्वरूप दामोदर। क्षेत्रवासी रामानंद राय प्रभु थे। प्रभु संगे यही सब कैल नित्य स्थिति। श्री रामानंद राय तथा जगन्नाथपुरी के निवासी अन्य भक्तगण भी महाप्रभु के साथ स्थायी रूप से रहते थे। अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीवास विद्यानिधि वासुदेव मुरारी चतुरदास। प्रतिवर्ष ऐसे संगे रहे 4 मास तासवालया प्रभु विविध विलास। अन्य भक्त जिनमें अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु मुकुंद श्रीवास विद्यानिधि वासुदेव तथा मुरारी प्रमुख थे। जगन्नाथपुरी आया करते थे और लगातार 4 मास तक महाप्रभु के साथ रहा करते थे। महाप्रभु इन सबके साथ विविध लीलाओं का आनंद देते थे। हरिदास सिद्धि प्राप्ति अद्भुत से सब आपने महाप्रभु जार कैल महोत्सव। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर ने देह त्याग दिया। ये घटना अत्यंत अद्भुत थी क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया। तवे रूप गोसाईर पुनरागमन ताहर हृदय कैला प्रभु शक्ति संचारा। श्रील रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से पुनः मिले। महाप्रभु ने उनके हृदय में समस्त दिव्य शक्ति संचारित कर दी। तो ये सारे श्लोक थे, इससे आप जा सकते हो महाप्रभु की लीलाओं में। तो किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो अंत्य लीला की शुरुआत है प्रमुख प्रमुख लीलाओं का नाम लेते हुए कृष्णदास कविराज हमें आगे ले जा रहे हैं। तो आज का श्लोक है अभी तबे छोट हरिदास प्रभु कैल दंड। दामोदर पंडित कैल प्रभु के वाक्य दंड। तबे छोट हरिदास प्रभु कैल दंड। दामोदर पंडित कैल प्रभु के वाक्य दंड। तबे छोट हरिदास प्रभु कैल दंड। दामोदर पंडित कैल प्रभु के वाक्य दंड। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तबे छोटा हरिदासे प्रभु कैल दंड दामोदर पंडित कैल प्रभु के वाक्य दंड। इसके बाद महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड दिया और दामोदर पंडित ने महाप्रभु को कुछ चेतावनी दी। तो यहां दोनों को दंड मिल रहा है। किसको किसको दंड मिल रहा है? छोटे हरिदास को। और जो छोटे हरिदास को दंड दे रहे हैं उनको भी कोई दंडित कर रहा है। तो कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो जीवन का उद्देश्य यही है कि कितने अच्छी तरह से हम कृष्ण का गुणगान कर सके। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, प्राण अच्छे जा सहेतु प्रचार, जिसमें प्राण है वही क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। और ये जो प्रचार है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने एक सॉन्ग में कहते हैं, हाँ, ब्रजवासी गण प्रचारक का धन, ये प्रचार ब्रजवासियों का ही धन है। जो ब्रजवासी गण है वो वास्तव में प्रचार कर सकते हैं। प्रचार का मतलब ही है कृष्ण प्रदान करना। तो प्रचार का मतलब यह है कि कृष्ण का गुणगान करना। मैं कल एक प्रभुपद का लेक्चर पढ़ रहा था तो उसमें प्रभुपद कह रहे थे, कृष्ण के प्रति किसी का प्रेम है तो उसका लक्षण क्या है कि वो उस व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि कैसे कृष्ण अधिक से अधिक ग्लोरीफाइड हो जाए पूरे विश्व में, पूरे संसार में कृष्ण की ख्याति कैसे पहुंचे। ये भावना जिस भक्त के हृदय में है वो वास्तव में कृष्ण का प्रेमी है। फिर प्रभुपाद गीता का वो श्लोक कोट करते हैं, ये इदम परमं गुह्यं, ये जो नॉलेज है दूसरों को प्रदान करता है, तो कृष्ण कहते हैं वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यदि हमारे जीवन से कृष्ण का गुणगान नहीं हो रहा है तो हम वास्तव में एक मृत व्यक्ति के समान है। इसलिए श्रीमद् भागवत में यमराज जब यमदूतों को उपदेश दे रहे थे तो यमराज कहते यमदूतों को, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतशन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णायन नमति यत् शिर एकदापि तानानयत्म सकृत विष्णु कृत्यान्। वो कहते हैं जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम देहम, तो जिस व्यक्ति की जिह्वा भगवान की गुण नाम आदि का उच्चारण नहीं कर रही है, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, और जिस व्यक्ति का चित्त कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, कृष्णायनो नमति यत् शिर एकदापि, और कृष्ण के प्रति जिसका ये माथा या सर नमन नहीं करता है, तो उन व्यक्तियों को वो कहते हैं यमराज, उन व्यक्तियों को कहा ले आओ, मेरे स्पेशल गेस्ट है वो लोग, कुछ होते ना वीआईपीस, तो वो वीआईपीस किसके गेस्ट है, यमराज की गेस्ट है। तो कहने का तात्पर्य है सारे आचार्यों के जीवन में हम यदि देखें तो उनका जीवन भरा हुआ है कृष्ण के गुणों का गान करने में। इसी कारण से कृष्णदास कविराज इतने वृद्ध हो गए थे फिर भी उन्होंने अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु का जो गुणगान है उसको कभी छोड़ा नहीं। तो भगवान का गुणगान करने का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर आता है जिस व्यक्ति के ऊपर वास्तव में अनंत शेष की कृपा है। किसकी कृपा है, अनंत शेष। तो अनंत शेष अपने सहस्र मुखों से, सहस्र हजारों हजारों सालों से, अनादिकाल से परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो अनंत शेष बलराम है, नित्यानंद प्रभु है, और वो वास्तव में उनके प्रतिनिधि कौन है, आध्यात्मिक गुरु। इसी कारण से हम रोज आध्यात्मिक गुरु के वर्णन में गाते हैं, क्या गाते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु है सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला में मग्न रहते हैं और उसका उच्चारण आदि करते हैं सारे संसार को। तो इस प्रकार से एक जो भक्त है जिसका जीवन हम भरते जाना चाहिए कृष्ण का गुणगान करने में, और वही हमारे जीवन की सफलता है। तो इतना इनके अंदर लालसा थी कृष्णदास कविराज के अंदर कि नहीं नहीं मैं इन सारी लीलाओं को जानता हूं, अब मेरे पास अभी वृद्धावस्था है, मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो इसलिए वो समरी रूप में क्या करते हैं इस अध्याय में, आगे जो लीलाएं वर्णन करनी है उनको पहले ही सारे लीलाओं को दे रहे हैं, तो उनकी विशेष देन है, मतलब इतनी ईगर है कृष्ण को देने के लिए। क्या चाहिए व्यक्ति के अंदर? ईगरनेस चाहिए, जैसे प्रभुपाद के अंदर थी ईगरनेस और करुणा। जब ये दोनों होती है तो वो वास्तव में प्रचारक बन सकता है। तो प्रचारक वही है जिसके पास आचार है, विचार है, और तभी वो क्या बन सकता है? प्रचारक बन सकता है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ये जो विशेष श्लोक है जिसके ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है उसमें सिखाते हैं, किसके सहायता से सिखाते हैं? अपने भक्तों को यूज करते हैं कृष्ण, जैसे अर्जुन को यूज किया भगवत गीता का उपदेश देने के लिए, या सास अपने बेटी को यूज करती है बहू को शिक्षा देने के लिए, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु छोटे हरिदास जो उनके अंतरंग भक्त हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं सारे सन्यासियों को, वैरागियों को ये शिक्षा प्रदान करने के लिए। प्रिय भक्त दंड करेन धर्म बुझाइते, वो कहते प्रिय भक्त दंड, अपने जो सबसे प्रिय है उनको महाप्रभु दंड देते हैं ताकि सारे जगत को असली धर्म क्या है उसकी शिक्षा वो प्रदान करें। तो इस श्लोक में दो लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज कर रहे हैं, एक है छोटा हरिदास का दंड और दूसरा है दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु को अपने वाक्य दंड देते हैं। इसी कारण से ये जो दो लीला है अंतिम लीला में आप पढ़ेंगे दूसरे और तीसरे अध्याय में, इन दो लीलाओं को बड़े पूरा एक चैप्टर में ही वर्णित किया है। यहां तो उन्होंने सूत्र रूप में दो लाइन में दिया, अंतिम लीला के दूसरे और तीसरे अध्याय में जाते हैं तो वहां वो डिटेल में वो सारी लंबी जो लीला है वो सुनने को मिलती है। तो यहां कृष्णदास कविराज छोटा हरिदास का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या क्यों चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड दिया था? एक तो बड़े हरिदास थे, कौन थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर और दूसरे छोटे हरिदास। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो उनके कई सारे भक्त उनको भोजन के लिए इनवाइट करते थे अपने घर में, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य और दूसरे थे भगवान आचार्य। तो भगवान आचार्य जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज कहते हैं, परम वैष्णव तेह सुपंडित आर्य, कहते जो भगवान आचार्य ऐसे भक्त थे जगन्नाथपुरी में, बहुत विद्वान थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे और कृष्ण के महान भक्त थे। इतना ही नहीं कृष्णदास कविराज कहते हैं, सत्य भाव आक्रांत चित्त गोप अवतार स्वरूप गोसाई सह सत्य व्यवहार। ये जो भगवान आचार्य थे जो सदैव कृष्ण के साथ सत्य भाव में आदान प्रदान करते थे, और कृष्ण लीला में जो गोप थे वही गौर लीला में भगवान पंडित के रूप में प्रकट हुए थे, और स्वरूप दामोदर के साथ उनका बड़ा मित्रता का व्यवहार था, और सदैव एकांत भाव में चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते थे, और बीच बीच में अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे भोजन के लिए। जब महाप्रभु को बुलाते थे तो कई प्रकार के व्यंजन अपनी पत्नी की सहायता से वो बनाते थे, और विशेष रूप से शुक्ल चावल, सफेद वर्ण का जो चावल है वो महाप्रभु को बहुत प्रिय था, तो वो चावल ये भगवान आचार्य बनाते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज मैं चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करता हूं और उनके लिए कई प्रकार के व्यंजन बनाता हूं, और व्यंजन के साथ शुभ्र राइस चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मेरे घर में तो नहीं है, तो उन्होंने छोटे हरिदास को बुलाया छोटे हरिदास को बुलाया जो एक वैरागी सन्यासी एक प्रकार से थे और वो महाप्रभु के बड़े कीर्तनिया थे। चैतन्य महाप्रभु छोटे हरिदास से कीर्तन नित्य रूप से सुना करते थे। तो भगवान आचार्य उनको बुलाते हैं और वो कहते हैं छोट हरिदास नाम प्रभु कीर्तनिया तहारे कहे न आचार्य गाकिया आनिया। तो छोटे हरिदास को जोर से पुकार कर बुलाते हैं भगवान आचार्य और उनको क्या बोलते हैं मोरडा में शिकी माहे तीर भगिनी स्थाने गया शुक्ल चावल हे कमान आन मांगिया। तो भगवान आचार्य छोटे हरिदास को कहते हैं कि ये छोटे हरिदास तुम क्या करो शिकी माहिती एक डिवोटी है प्रभु जी है नाम तो शिकी माहिती है। तो मुझे शुरुआत में चैतन्य चरितमृत पढ़ता था तो मुझे लगता था ये माता जी का नाम है। तो शिकी माहिती की जो बहन है उनको कहते उनके पास चले जाओ और उनके पास से शुभ्र चावल लेके आ जाओ। माहितीर भगिनी से नाम माधवी देवी वृद्धा तपस्विनी आर परमा वैष्णवी। तो शिखी माहिती की बहन थी जो बहुत वृद्ध थी उनका नाम क्या था माधवी देवी। तो उनके पास इनको चावल लाने के लिए भेजते हैं तो उसके गुणों का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं परम वैष्णवी। ऐसी वैसी वैष्णवी नहीं थी परम वैष्णवी बहुत उन्नत श्री थी कृष्ण भावना में। और महाप्रभु को महाप्रभु जो ये 3.5 भक्त थे उनको राधा रानी के सबसे नजदीक के संगी के रूप में महाप्रभु स्वीकार करते थे। गौर लीला में प्रभु लेखा करे जा रहे राधिकार गण जगत तेरा मध्य पात्र 3.5 जन। तो 3.5 भक्त थे जो महाप्रभु सोचते थे कि राधा रानी के नजदीक के कोई भक्त है या ना राधा रानी के संगी कोई है सबसे क्लोज तो ये 3.5 डिवोटीज हैं। तो वो कौन कौन थे स्वरूप गोसाई आर रामानंद राय शिखी माहिती 3 आर भगिनी अर्ध जन। तो कहते हैं स्वरूप दामोदर रामानंद राय शिखी माहिती और उनकी बहन जो श्री है इसलिए उनकी गणना आधे भी करते हैं महाप्रभु। कहते कि ये 3 और ये आधे ये जो उनकी बहन है ये राधा रानी के सबसे प्रिय है। तो ऐसे माधवी देवी के पास उनको राइस लाने के लिए भेजा जाता है वो शुभ्र राइस उनसे लेके आते हैं लाके भगवान आचार्य को देते हैं। भगवान आचार्य उनका कुकिंग करते हैं कई सारे तरकारियां सब्जियां बनाते हैं और महाप्रभु को पाचन भी हो इसलिए जो अदरक होता है उसको पीसते हैं नींबू नमक इनका मिश्रण बनाकर रखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण करेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के लिए आए भगवान आचार्य के घर में तो दोपहर का समय हो गया था। महाप्रभु ने आए आते ही सबसे पहले उनकी दृष्टि किस पर चली गई शुभ्र चावल। जैसे हमें जो सबसे प्रिय वस्तु है ना भोजन में प्लेट में ढूंढते रहते हैं कहां चली गई वो प्रिय वस्तु। तो जैसे ही महाप्रभु ने देखा शुभ्र चावल हर एक उसका कण अलग अलग था बहुत फ्रेश लग रहा था। तो महाप्रभु ने कहा प्रशंसा करने शुरू कर दी। महाप्रभु ने कहा भगवान आचार्य ये कहां से तुमने इतने सुंदर चावल लेके आ गए हो। तो उन्होंने कहा मैं ये तो माधवी देवी से लेके आया हूं। तो महाप्रभु ने पूछा कौन लेके आया तो क्या कहते हैं छोटा हरिदास लेके आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं। महाप्रभु ने क्या किया कुछ कहा नहीं। महाप्रभु ने अन्न की प्रशंसा की उस भोजन को स्वीकार किया और वापस वो गंभीरा में आते हैं अपने निवास स्थान में आते हैं। आते उनके पीछे पीछे उनका कमंडलू लेकर कौन चलते हैं गोविंद। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने गंभीरा में प्रवेश किया गोविंद उनके पीछे चल रहा था। महाप्रभु ने पीछे ना देखते हुए आगे देखते ही एक बहुत कठोर अब वचन बोले, क्या बोले महाप्रभु ने, आज हैते मोर आज्ञा पालिबा, छोटा हरिदास यहाँ आसी तेना दिवा। तो महाप्रभु ने कहा, गोविंद आज से मेरे आज्ञा का पालन करो। क्या आज्ञा है? छोटे हरिदास को मेरे निवास स्थान में आने के लिए मना कर दो, प्रवेश वर्जित। तो जब छोटा हरिदास आ गए तो गोविंद ने तो उनको मना किया, और उनको पता चला कि मुझे यहाँ एंट्री नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के गंभीरा में प्रवेश करना मुझे अलाउड नहीं है। तो इतने आदि दुखी हो गए छोटे हरिदास, दुखी हो गए। 3 दिन तक वो उपवास करने लगे, 3 दिन बीते, कोई उनको पूछ नहीं रहा है, और उनको ये कारण भी पता नहीं चला कि क्यों उनको मना किया गया है। तो वो वैसे ही उपवास करते रहे और फिर बहुत दुखी थे। और स्वरूप दामोदर को जब पता चला तो स्वरूप दामोदर ने सोचा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाता हूं और उनको पूछता हूं क्या कारण था। तो चैतन्य महाप्रभु के पास स्वरूप दामोदर जाते और पूछते हैं कि हे प्रभु, छोटे हरिदास ने कौन सा अपराध किया था? तो महाप्रभु बोलने लगे, और वो वास्तव में वैरागियों के लिए, सन्यासियों के लिए बहुत मूल्यवान शिक्षा है। केवल वैरागियों के लिए भी नहीं, इवन हर एक जीव, हर एक भक्त जो कृष्ण भक्ति करने के लिए है बहुत तत्पर है, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी तेना पारवा में तहार वदान। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा, प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण। प्रकृति मीन्स कौन? जो स्त्री है। ऐसे नहीं कि स्त्री के लिए लागू नहीं है, स्त्री के लिए भी ये लागू है। तो वैरागी होकर जो स्त्रियों से बहुत अधिक बातें करता है, स्त्रियों से संभाषण रखता है, महाप्रभु कहते हैं ऐसे व्यक्ति का मुख मैं देखना नहीं चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु का ये बहुत बड़ा आचरण है। इसलिए भक्तिरो ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, वो लिखते हैं कि कलियुगे साधु गुरु पाया, कलियुग में साधु गुरु प्राप्त करना बहुत कठिन है, दुष्कर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं साधु और गुरु का रोल अदा करने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं और अपने आचरण से वैरागी या धर्म की शिक्षा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने कहा वैष्णव वो है जिसमें सरलता है। जिसमें क्या है? सरलता है। प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि जब व्यक्ति सरलता को छोड़ता है तो व्यक्ति कपटता का आश्रय लेता है, और भक्तिमय सिद्धांत में कपटता का आश्रय लेना सबसे बड़ी बाधा है भक्तिमय जीवन में। चाहे वो फिर करोड़ों जन्म भगवत भक्ति में बना रहे तो भी उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए कठोर बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कही। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य होकर व्यक्ति कपटता का आश्रय लेता है तो उससे अच्छा है कि पशु योनियों में जन्म लेना, वो ज्यादा बेटर है। यदि मनुष्य बनने के बाद भी व्यक्ति कपटता का आश्रय लेकर अपना जीवन यापन करता है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते कि हर एक आश्रम में कोई व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, और विशेष रूप से जो वैरागी है। आश्रम का मतलब क्या है? जिसमें आप गुरु और कृष्ण का आश्रय लेते हो वो वास्तव में आश्रम है। ये आश्रम का मतलब जहां आ मीन्स अधिक और श्रम, जहां अधिक आप श्रम करते हो भगवत साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, वो वास्तव में आश्रम कहलाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहां मर्यादा की शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं? मर्यादा। तो जब व्यक्ति अपना अधिकार भूलता है, अपने आश्रम की मर्यादा भूलता है, तो उसका जीवन डिस्ट्रॉय होने लगता है, खत्म होने लगता है। जैसे है, क्योंकि हम देखते हैं भौतिक जगत में भी व्यक्ति मर्यादा भूलता है तो उसका जीवन कष्टमय होने लगता है। हाँ, जैसे जो वेश्या है, वेश्या को कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन जो पतिव्रता नारी है, स्त्री है, उसके पास मर्यादा है, और जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? वेश्या कहा जाता है। उसी प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि छोटे हरिदास सन्यासी है, वैरागी है, उनके लिए मर्यादा है, और उस मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए उनको दंड आवश्यक है। जैसे सीता देवी थी, सीता महारानी, हाँ, सीता महारानी को लक्ष्मण ने मर्यादा की रेखा डाली थी। कौन सी रेखा थी? वो लक्ष्मण रेखा, बल्कि वो मर्यादा की रेखा थी, लेकिन जब वो मर्यादा को क्रॉस किया उसने, तो रावण की शिकार बनी। तो उसी प्रकार से हम अपने जीवन जब मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो हम अपना भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी खत्म करते हैं, विनाश करते हैं। जैसे आजकल तो मर्यादा रही नहीं, स्त्री पुरुष बनना चाहती है और पुरुष पुरुष ही रहना चाहता है या स्त्री बनना चाहता है। स्त्रियों ने अपने वस्त्र छोड़े, पुरुषों के वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री कितना भी प्रयास करे वो पुरुष नहीं बन सकती। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति मर्यादा को तोड़कर यदि सोचता है कि अत्यधिक आनंद मुझे मिल सकता है, तो ये उसके लिए भ्रम है, इल्यूजन है। और वास्तव में जैसे रामचंद्रपुरी, उन्होंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया था। किसको उपदेश देना शुरू कर दिया? अपने गुरु को ही, माधवेंद्रपुरी को उपदेश देना शुरू किया। लेकिन जब हम मर्यादा का पालन करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन सरल और सफल बनता है। जैसे भरत, भरत ने मर्यादा का पालन किया। भगवान राम ही राजा है, और वो गए भगवान राम के चरण पादुका ले आए और उनको सिंहासन में रख के भगवान राम को राजा के रूप में स्वीकार करके क्या किया? वो महान भगवान राम के भक्त बने। इस प्रकार से हम देखते हैं गांधारी भी मर्यादा का पालन करती हैं, हाथ में पट्टी डाल के। या फिर पांडवों ने जो युद्ध शुरू करना था, तो युद्ध शुरुआत करने से पहले युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरकर चलने लगे। चलते चलते कहां गए? दूसरी सेना के पास। भीमादि कहने लगे, पागल तो नहीं हो गया हमारे बड़े भ्राता? हम वहां जाकर क्या करते? गुरुजनों का आशीर्वाद लेते, ब्लेसिंग लेते हैं, क्योंकि उनके ब्लेसिंग में ही सफलता है, विक्ट्री है, जय है। तो इस प्रकार से मर्यादा जैसे हम उल्लंघन करेंगे अपने अधिकार, अपना आश्रम अधिकार, तो समझना चाहिए कि हमारे घंटे की क्या है, खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। तो इसलिए मर्यादा की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। और मर्यादा का पालन करना मतलब जब हम मर्यादा को लांघते हैं, तो एक तो अपना जीवन हम उद्ध्वस्त करते हैं और साथ ही साथ दूसरे का जीवन भी। इसी कारण से मर्यादा का पालन करने का मतलब है सदाचार का पालन करना। इसको क्या कहते हैं? वैष्णव एटिकेट्स। हाँ, तो वैष्णव एटिकेट्स है जो वास्तव में मर्यादा का पालन करने के लिए है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कहते हैं, वैष्णव कौन है? ग्रहित्वा विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः, वैष्णवो विहितो विज्ञ इतरो स्मात् अवैष्णवः। हरि भक्ति विलास का जो पहला विलास है उसमें कहते हैं ग्रहित्वा विष्णु दीक्षा, जिसने आध्यात्मिक गुरु जो परंपरा में है उनसे दीक्षा ग्रहण की है और विष्णु की पूजा में लगा हुआ है उसको विज्ञान वैष्णव कहते हैं, और इसके अलावा जो भी है वो अवैष्णव है। तो वैष्णव का मतलब ही है जो सदाचार पूर्ण है। प्रभुपाद को पूछा वैष्णव कौन है, प्रभुपाद ने क्या कहा, इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। प्रभुपाद ने कहा जो सज्जन है पूर्ण रूप से वो वास्तव में वैष्णव है। तो सदाचार का मतलब है सत आचार, असत आचार नहीं, या फिर सदा मीन्स नित्य आचार, नित्य वैष्णव धर्म के अनुसार आचरण करता है वो वास्तव में सदाचार का पालन करता है। इसी कारण से महाप्रभु ये सिखाते हैं कि हमें अपने आचरण से हम क्या करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। हाँ, इसलिए है चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो दो ही लोग धर्म की स्थापना करते हैं, एक तो स्वयं भगवान करते हैं धर्म की स्थापना और दूसरा हाँ साधुर व्यवहार, धर्म स्थापना हेतु तो साधुर व्यवहार। तो साधु अपने आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों से या उनके अनुयायियों से ये आशा करते हैं कि उनका जीवन कैसे हो, परफेक्ट आचरण से भरा हुआ हो। इसी कारण से चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की शुरुआत में ही ये वर्णन आता है, आपने ना कहले धर्म सिखाना ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। कृष्णदास कविराज कहते हैं गीता और भागवत इसी की शिक्षा देते हैं कि आप हम जब आचरण करते हैं तभी हम दूसरों को सिखा सकते हैं। हाँ, इस कारण से अपने आचरण से सिखाने के लिए कृष्ण अपनी मुरली या बांसुरी को फेंकते हैं और क्या पकड़ते हैं, दंडा पकड़ते हैं, और उस दंडे के द्वारा अपने भक्तों को भी वो दंडित करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी के आचरण को देखा तो महाप्रभु को बहुत आनंद हुआ। चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में एक बार प्रसाद दे रहे थे तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा कि आप भी आ जाना प्रसाद के लिए। सनातन गोस्वामी तो सिद्ध बकुल में रहा करते थे, तो दोपहर का समय हुआ था, बहुत कड़ी धूप थी, तो सनातन गोस्वामी को जाना था लेकिन शॉर्टकट वे था कि जगन्नाथ टेम्पल के मेन गेट के सामने से छोटा गोपीनाथ पहुंचे प्रसाद के लिए। लेकिन सनातन गोस्वामी उस रोड से नहीं गए, समंदर के किनारे से बालों में चलते चलते पहुंचे महाप्रभु के पास, और महाप्रभु के पास पहुंचते चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सनातन गोस्वामी के पांव में बड़े बड़े छाले हो गए हैं। हाँ, जो गरम बालों के ऊपर वो चल के आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्यों ऐसा किया आपने, अब यहां से भी तो आ सकते थे चल के। कहते नहीं, मैं अस्पृश्य हूं, नीच हूं, मैं नहीं चाहता कि जगन्नाथ के सेवक मंदिर से बाहर आते जाते हैं उनका स्पर्श मेरे शरीर से हो जाए, जिसके द्वारा जगन्नाथ की सेवा में बाधा हो सकती है। इस आचरण को पालन करने के लिए सनातन गोस्वामी पूरे दूर से घूम के जाते हैं। तो जैसे ये वचन उन्होंने सुने महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा यद्यपि हो तुम हो जगत पावन, तुम स्पर्श पवित्र देव मुनिगण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे सनातन, तुम वास्तव में सारे जगत को पावन करने वाले हो, तुम्हारा स्पर्श देवतागण भी करते हैं तो भी वो अपने आप को बहुत शुद्ध महसूस करते हैं, लेकिन क्यों तुम हमें तुम्हारी क्यों प्रशंसा करता हूं, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। क्योंकि ये भक्त से आशा की जाती है कि मर्यादा की रक्षा एक भक्त करता है। मर्यादा मतलब एटिकेट्स, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, सन्यासियों के साथ, गृहस्थों के साथ, स्त्रियों के साथ आपस में जो व्यवहार है उसमें कितनी मर्यादाएं हैं, इनकी शिक्षा कहां से लेनी चाहिए हमें, साधु गुरु और शास्त्र से, और उसी के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। जैसे मर्यादा को भूलते हैं वैसे ही हमारा आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है। इस कारण से महाप्रभु ने कहा, भक्त का स्वभाव है मर्यादा की रक्षा करता है, और मर्यादा पालन है साधुर भूषण। भूषण मीन्स आभूषण, ऑर्नामेंट। साधु का आभूषण क्या है? मर्यादा में रहता है। जैसे हम कहते हैं बच्चे तुम मर्यादा तोड़ रहे हो, हाँ, जैसे समंदर मर्यादा तोड़ता है तो क्या होता है? फिर सुनामी आ जाता है। तो वैसे ही है, भक्ति जो मर्यादा भूलता है हाँ तो उसके आध्यात्मिक जीवन में सुनामी आ जाता है। तो महाप्रभु ने कहा, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, यह लोक परलोक हय द्विनाश। जब व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है तो इस जगत में भी और दूसरे जगत में भी उसकी गति नहीं है। महाप्रभु ने कहा, मर्यादा प्राखिले तुस्ता कैला मरमन। हे सनातन, तुमने इस मर्यादा का पालन करके मुझे बहुत आनंदित किया है। तुम्ही आइछे ना करेले करे कौन जन। तुम भक्त हो, भक्त ऐसा मर्यादा का पालन नहीं करेगा तो किसी और से क्या आशा रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि एक डिवोटी को जो मर्यादा का पालन है, सदाचार है, वैष्णव एटिकेट है, वो उसको अवगत होना चाहिए और अपने जीवन में भी उसको ढालना चाहिए। इसी कारण से महाप्रभु छोटे हरिदास को दंड दे रहे हैं, क्योंकि वो वैरागी थे, वो सन्यासी थे, लेकिन वो किसका संग उन्होंने कोई ऐसा, वो गए हैं माधवी देवी से, उन्होंने केवल चावल मांगे थे, तो यही उनकी एक गलती थी। इस कारण से महाप्रभु हाँ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। इवन अपने गृहस्थ जीवन में थे तो कोई स्त्री सामने से आती थी तो एक ओर से चलते थे और अपनी आंखें कहां रखते थे? नीचे। तो ये मर्यादा है। जैसे लक्ष्मण को जब पूछा, ये जब सीता देवी के बहुत सारे आभूषण मिले तो वो कहते, वो कंगन और ऊपर जो वस्त्र आभूषण थे, लक्ष्मण कहते ये सब मैं नहीं जानता, नोपर नोपुर एव ही जाना मैं। जब चरणों का नुपुर दिखाया तो लक्ष्मण क्या कहते, मैं क्या जानता हूं, केवल नुपुर को मैंने देखा है। हाँ, क्योंकि वो कहां देखते थे? सदैव सीता देवी के चरण। तो ये मर्यादा है। जैसे मर्यादा का उल्लंघन होता है तो हम वास्तव में कपटता का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ये हरेक आश्रम के व्यक्ति के लिए है, हाँ, ये जो मर्यादा है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा, मातृवत पर दारेशो लोस्टवत पर द्रव्येशो। दूसरों का धन एक इसके समान है, धूल के समान है, और जो स्त्री है वो उसको कैसे समझना चाहिए हमें? माता के समान, मातृवत पर दारेशो। लेकिन जीव के अंदर, जैसे जीव इस भौतिक शरीर का आश्रय ग्रहण करता है, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में हो, उसके अंदर क्या है? इंद्रिय उपभोग करने की तीव्र इच्छा है। और जो सदैव लालायित होता है वो सदैव अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है भौतिक भोग के लिए। इसी कारण से जो भौतिक भोग है, जिसको श्रीमद् भागवत में तुच्छ कहा गया है, यन्मैथुनादि गृहमेदं सुखम् हि तुच्छम्, कंडू नयन करयोर एव दुख दुखम्। तो प्रहलाद महाराज वो कहते हैं कि ये भौतिक जो सुख है वो वास्तव में तुच्छ है। वो इस भौतिक सुख की तुलना दो चीजों से करते हैं। वो पहले कहते हैं कि ये सुख दुख तुच्छ है, और दूसरी बात प्रहलाद कहते हैं कि इसका रिजल्ट केवल दुख ही दुख है। इसी कारण से कृष्ण भी भगवद गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख एनय एवते अत्यंत मंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये जो स्पर्श सुख इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है ये अंत में क्या देगा? दुख ही देगा। इसलिए नतेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें रममान होने का प्रयास नहीं करता। लेकिन ये इंद्रिय आसक्ति इतनी प्रबल है, गीता में कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, कि इंद्रिय आकर्षण इतना पागल बना देता है व्यक्ति को कि बलपूर्वक वो मन को क्या कर लेता है, हरण कर लेता है, व्यक्ति अपने घुटने टेक देता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैरागी होकर श्री से संभाषण करता है, या फिर क्योंकि ये टू वे है, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति है उसको श्रीयों की वाणी बहुत मधुर लगती है और श्रीयों को भी पुरुषों की, पर पुरुषों की वाणी क्या है, मधुर लगती है। इसलिए हाँ, तो ये सब गैजेट्स है, इजी हो गया। पहले तो पर्दा डाल के कुछ मर्यादा होती थी, अभी मर्यादा नाम की कोई चीज अस्तित्व ही में नहीं है। हाँ, तो अभी तो ओपन हो गए हैं, सारा सारे जो मर्यादा है उनका भंग हो गया है। इस कारण से महाप्रभु वो कहते हैं अगले लाइन में, वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवि प्रकृति हरे मुनेरपि मान। तो महाप्रभु ने तो पहले स्वरूप दामोदर गए पूछने, क्यों उनको दंडित किया। उन्होंने कहा, वैरागी होकर चुप चुप के स्त्रियों से बातें करते हैं, और दूसरा है महाप्रभु कहते हैं दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण। दुर्वार का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड इंद्रिया केवल विषयों को ग्रहण करना चाहती हैं। दारवी प्रकृति हरे मुने रपि मन, महाप्रभु ने कहा लक्कड़ की स्त्री भी हो तो जो मुनि है, पहुंचा हुआ मुनि, उसके मन को भी क्या करती है, हरण कर लेती है। हाँ, जो डायलॉग्स लगे होते हैं ना क्लोथ शॉप्स में, इसलिए हम हमारे दिल्ली टेम्पल में जो हम थे तो हम सेंट्रल मार्केट में डिवोटीज को लेकर हरिनाम नहीं निकालते थे, फिर वो महाप्रभु की सबको याद आती थी, भक्त कहते थे कि हम सेंट्रल मार्केट में नहीं जाएंगे, वहां बहुत सारे दानवी प्रकृति, हाँ बहुत सारे स्टैचू लगाए हुए हैं, और वैसे वहां कोई रिजल्ट आता नहीं था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, हरिनाम कितने किए। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि दानवी प्रकृति भी मुनि के मन को हर लेती है। इसलिए प्रभुपद कहते हैं हमें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस, क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे साथ नहीं होगा। महाप्रभु के जो पार्षद थे कृष्णदास, दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर भट्टाधारियों का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें ऐसी बड़ी कौन सी बात है। तो मतलब हम भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम सोचते कि नहीं, मैं तो इससे परे हूं, हाँ मैं इससे एक्सेप्शनल केस है, मेरे साथ ये घटित नहीं हो सकता। लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जो कृष्ण श्री धन देखा या लोभ जन्माया, वो धन देखकर ये जो कृष्णदास थे महाप्रभु के संगी, उनके हृदय में लोभ जागृत हुआ, और चैतन्य महाप्रभु रात्रि में सो गए थे, वो उनको छोड़कर चले गए उस ग्रुप में। तो महाप्रभु ने देखा सेक्रेटरी कहां चला गया, मेरा असिस्टेंट कहां है, तो देखा असिस्टेंट कमंडलो क्लोथ सब छोड़ के किसी और जगह है। तो फिर महाप्रभु भट्टाचार्यों के वहां गए, उन्होंने कहा आमी है सन्यासी देखकर तुम्ही है सन्यासी, और वो सन्यासी थे भट्टाचार्य, वो दूसरों की बड़े बड़े की घर की स्त्रियों को फुसलाते थे और अपने कैंप में भर्ती करते थे और अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहते थे, और उन्होंने देखा ये सरल है कृष्णदास, उनको भी आकर्षित कर दिया और वो महाप्रभु को छोड़कर गए, और वो सन्यासी जैसे रहते थे सारा ग्रुप। महाप्रभु ने कहा तुम भी सन्यासी हो, मैं भी सन्यासी हूं, क्यों मुझे दुख दे रहे हो। तो उन सबने अपने शस्त्र अस्त्र उठाए, तलवार आदि उठाए, चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए दौड़े, तो महाप्रभु ने देखा कि उनके हाथ से सारे जो शस्त्र अस्त्र है वही उनके शरीर में गिरते हैं, उनके सर कटते हैं, हाथ पांव कटने लगते हैं और वो सारे डर जाते हैं। तो महाप्रभु ने देखा कृष्णदास अभी भी वहां बैठा हुआ है, हाँ, तो इसलिए प्रभुपद कहते चोटी रखना बहुत आवश्यक है। चोटी क्यों रखते हैं, गुरु को इजी हो जाता है आपको पकड़ना। तो महाप्रभु ने क्या किया,
भट्टाधारी घरे महा क्रंदन उठिला केशधारी विप्रलया करिला गमन। महाप्रभु ने उनकी चोटी को पकड़ा, खींच के ले आ गए। कहते हैं तुम यात्रा में मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो, तुम्हें छोड़ोगा सीधा जगन्नाथ पुरी में, बीच में नहीं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दानवी प्रकृति, एक मुनि भी इस चीज से आकृष्ट हो सकता है पूर्ण रूपेण। इसलिए ब्रह्म पुराण में एक वर्णन आता है कंडु मुनि का। ब्रह्म पुराण में एक कंडु मुनि थे जो गोमती नदी के तट पर बहुत अधिक तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवता गण भी बहुत डर गए, और सबसे पहले कौन डरने लगते तपस्या से? इंद्र। सबको अपने पद की चिंता है, तो इंद्र डर गए और उन्होंने देखा कि इसके भजन में बाधा डालनी है तो कुछ उपाय करना होगा। तो उस समय में बाधा डालने के लिए तो एक ही उपाय था। क्या उपाय था? अप्सराओं को भेजा जाता था, जो सौंदर्यवती अप्सराए हैं स्वर्ग में। तो एक अप्सरा थी प्रमलोचा, उनका नाम था। उनको जब इंद्र ने रिक्वेस्ट की तो अप्सरा डर गए। उन्होंने कहा उस मुनि के सामने मैं नहीं जा सकती, वो कुपित हो जाएंगे तो मुझे भस्म कर देंगे, मैं अकेले नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा अकेले नहीं, आपके साथ पूरी सेना में भेजता हूं। और सेना के प्रमुख कौन होते हैं? कामदेव, कंदर्प। तो कामदेव को भेजा, उसके साथ वसंत ऋतु और दक्षिण नाम का जो समीर होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों को भेजा। तो ये अप्सरा गए तो मुनि एकांत में भजन किया करते थे, और कभी कभी फ्लावर्स तोड़ने के लिए बाहर आते थे। तो जैसे ये कंडो मुनि बाहर आ गए फूल तोड़ने के लिए, तो ये जो अप्सरा थी वो मधुर गीत गाया करते थे, सुंदर गीत गा रहे थे और साथ साथ पुष्प तोड़ रहे थे। तो जैसे वो पुष्प तोड़ रही थी और उसके गीत आदि को देखा, तो ये जो मुनि है वो विचलित हो गए, उनका जो हृदय है काम बांध से पीड़ित हो गया, और वो उनके शरीर में रोमांच जागृत हो गए मुनि के शरीर में। और मुनि दौड़ते हुए उनके पास जाता है, वो कहता है कि हे सुंदरी आपका परिचय बताओ। तो वो जो सुंदरी कहती है मैं तो आपकी एकमात्र सेविका हूं, आपकी पूजा के लिए फ्लावर्स एकत्रित करने के लिए मैं यहाँ आई हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे लिए सहायता कर रही हो। तो कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत में थर्ड कैंटो में वर्णन आता है कि व्यक्ति आसक्त हो जाता है, जो माया है वो एंटर करती है सेवा के रूप में, टू वे है। चाहे कोई स्त्री के जीवन में कोई पुरुष एंटर करता है उसके लिए बाधा बनता है भक्ति में जीवन में, तो वो सेवा के द्वारा है, कुछ ना कुछ उसकी सेवा करेगा तो वहां अटैचमेंट क्रिएट होती है। और स्त्री भी किसी पुरुष के जीवन में आती है सेवा के द्वारा। इसलिए कपिल देव कहते हैं अपनी माता को, कहते हैं कि ये जो चीजें हैं वो इस प्रकार की सेवा से शुरू होती हैं और जिससे आसक्ति का उदय होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेविका हूं, आपके लिए फूल तोड़ने के लिए यहां आए हो, शीघ्र मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो उन्होंने कहा, उनका हाथ पकड़ा मुनि ने और अपने आश्रम में प्रवेश किया। तो मुनि तो बड़े युवक थे, तो जैसे उनके आश्रम में प्रवेश किया तो ये मुनि सब कुछ भूल गए कि भागवतम क्लास भी होती है, मॉर्निंग प्रोग्राम भी है, प्रचार की एंगेजमेंट्स भी है, सारी आरतियां जप तप संध्या तर्पण आदि सब कुछ भूल गए हैं, और मंदाराचल की गुफा में उस अप्सरा के साथ 100 साल बीते विषय भोगों में। और एक दिन उस अप्सरा ने कहा कि मैं जा रही हूं। तो उन्होंने कहा अरे सुंदरी ठहरो, अभी कहां जा रही हो? तो उसने सोचा, वो जानते थे कि ये जो विरह है जो सहने के लिए बहुत कठिन है, इसलिए वो रुके और फिर एक दिन अचानक उस मुनि के हृदय में भावना आई और वो मुनि उठ जाते अपने स्थान से और दौड़ने लगते बाहर, गुफा से बाहर। तो वो कहती है कि हे शुभ, आप कहां जा रहे हो इतने तेज गति से? तो कहते देखो अभी पूरा दिन बीत गया है, संध्या का समय हो गया है, मुझे संध्या उपासना करनी है, नहीं तो मेरा लोप हो जाएगा, कर्म लोप हो जाएगा। तो वो कहती है, वो हंसने लगे, वो कहती है कि आप भूल गए महात्मा। वो कहते कि आज का दिन नहीं बीता, कितने दिन बीते हैं? हाँ, तो वो उसको आंखें खोलता है और वो सोचता है ये इतनी जोर से क्यों हंस रही है। तो मुनि उनको पूछते हैं, तुम तो आज सुबह सुबह मैंने तुम्हें देखा था, प्रातः काल में तो तुम मुझे मिली हो और आप अप्सरा हो, और आप कहती हो कि सैकड़ों वर्ष बीत गए हमें मिले हुए। तो पूछता है मुनि कितने साल हो गए? तो अप्सरा कहते हैं 907 साल 6 महीने 3 दिन। तो मुनि को शौक लगता है, मुनि सोचता है कि कितनी ये प्रबल आ सकती है। हाँ, मैं पूर्ण रूप से सब कुछ भूल गया, फिर उस स्थान को छोड़ते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं और जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। और वहां जाकर क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसी कारण से ये सब चीजें हमारे साथ भी हैं। ऐसे नहीं कि उस मुनि के साथ ये घटित हुआ, मेरे साथ नहीं। माया का मतलब है जो भी वस्तु हमें कृष्ण का विस्मरण दिला दे, वो वस्तु वो व्यक्ति वो स्थान हमारे लिए क्या है? माया है। इसी कारण से इन इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई है। कर्मेंद्रियानि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण। हम कर्मेंद्रियों को वश में कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मन से क्या करते हैं? सदैव स्मरण करते हैं। इसी कारण से व्यासदेव भागवतम में लिखते हैं, मात्रा स्वत्रा दुहित्रा वा नामि विक्ते सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति। ये इंद्रिय इतने प्रबल हैं कि विद्वान व्यक्ति का मन भी आकृष्ट कर लेती हैं। इसी कारण से आदि शंकराचार्य ने एक बुक लिखे थे विवेक चूड़ामणि, उसमें वो कहते हैं इन इंद्रियों का वर्णन करते हुए, वो कहते हैं कि ये जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया जिनके द्वारा हम भोग करते हैं, एनिमल एक ही इंद्रिय का मैक्सिमम यूज करता है। हाँ, जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, पतंग का, हिरण का, मछली का आदि। तो कहते लेकिन जो मनुष्य है उसकी तो वो 5 इंद्रिया उसकी बहुत प्रबल है, जिसके कारण वो क्या करता है? उपभोग करता है। तो कितना कठिन है उसको इन इंद्रियों से अनासक्त होकर भगवान की सेवा में लगाना। इसलिए संस्कृत में एक सुभाषित है जिसमें कहा गया है, सास्रियान मदम कुरिया सर सुखी तृष्णयो जित्सा तन मित्रम यत्र विश्वास पुरुषास्त जितेंद्रिया। वो कहते हैं कि रियल धन, वास्तविक धन कौन सा है? जो आपको घमंड ना दे, आपके जीवन में घमंड ना ला दे, वो धन रियल है। और वो कहते हैं सुखी व्यक्ति कौन है? स सुखी तृष्णयो जिता, वो व्यक्ति सुखी है जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं ना हो। और वो कहते हैं तन मित्र यत्र विश्वास हो, मित्र कौन है? जिस पर आप विश्वास कर सकते हो वो मित्र है। पुरुषः स जितेंद्रिया, पुरुष कौन है? जिसने अपने इंद्रियों को क्या किया है? जीत लिया है। इसी कारण से गीता में कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं तो कृष्ण ने कहा इन इंद्रियों का इस्तेमाल उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे कछुआ। यदा संहरते चायम कुर्मांगानि व सर्वशा इंद्रियानि इंद्रियार्थव्य दश प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियानि इंद्रियार्थव्य, इंद्रिया के जो अर्थ है उनसे जो प्रदत्त होता है उनसे दूर होता है वो वास्तव में इन इंद्रियों को क्या कर सकता है, कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। इसी कारण से नरोत्तम दास ठाकुर एक जब गीत लिखते हैं तो उसमें वो रो पड़ते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय विषमा विष सतत खाइनो, गौर कीर्तन रसे मगन ना हैनो। वो कहते हैं प्रभुपद के एक फेवरेट सॉन्ग में से सॉन्ग था जिसकी शुरुआत है गोरा पहो ना भजिया महीनो, कि हे गौरांग महाप्रभु मुझे इतना अपॉर्चुनिटी मिला था आपका भजन करने का लेकिन मैंने आपका भजन नहीं किया। विषय विषम विष सतत खाइनो, हाँ विषयों का जो विष है उसको मैं सतत क्या हो रहा हूं खा रहा हूं। हाँ विष सोचो प्याले में पिया जाता है तो हमारे प्याला क्या है आजकल, इससे हम विष पान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर रोदन करते हैं और वो कहते हैं कि मैं वास्तव में गौरांग महाप्रभु की कीर्तन में मग्न नहीं हो गया। इसी कारण से कृष्ण कहते हैं ज्ञान क्या है 13वें अध्याय में गीता के, तो भगवान कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य, इंद्रियों को जो अर्थ है उनसे वैराग्य लाना ये वास्तव में ज्ञान है। तो इस प्रकार से यहां चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को दंडित करते हैं और दंडित करते हुए सरोज दामोदर को ये सब चीजें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सरोज दामोदर के ये उचित नहीं है कि तुम मुझे पूछने आए हो कि छोटे हरिदास ने क्या किया। तो महाप्रभु छोटे हरिदास के उदाहरण से हमें सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्षुद्र जीव सब मयकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चराया बुले प्रकृति संभाषिया। तो कहते हैं ऐसे अनेक संपत्ति रहित क्षुद्र व्यक्ति हैं जो बंदरों जैसा वैराग्य स्वीकार करते हैं, वे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने तथा स्त्रियों से घनिष्ठता पूर्वक बातें करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सब बोला स्वरूप दामोदर को तो स्वरूप दामोदर चुप हो गए और फिर सारे भक्तों ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु ने इनको क्षमा कर देना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी के जितने भक्त थे वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इनको क्षमा कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते आप सब लोग यदि मुझे जगन्नाथपुरी में देखना चाहते हो तो फिर से मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं जगन्नाथपुरी को छोड़कर चला जाऊंगा। तो सारे भक्त अपने कान में हाथ लगाते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु किस लीला को कोई समझ नहीं पा रहा था। तो फिर भक्तों ने परमानंदपुरी से जाकर ये कहा, परमानंदपुरी जो बहुत सीनियर थे तो उनको जाके कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु को बताइए। तो परमानंदपुरी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, परमानंदपुरी को चैतन्य महाप्रभु बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं और पूछते कि हे परमानंदपुरी आप क्यों मेरे पास आए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप छोटा हरिदास को क्षमा कीजिए। तो परमानंदपुरी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप इधर रह जाओ सारे भक्तों को लेकर, मैं जगन्नाथपुरी को छोड़ के परमानेंटली चला जाऊंगा और अलालनाथ में जाकर निवास करूंगा गोविंद के साथ। इस प्रकार से महाप्रभु मर्यादा क्या है उसकी हमें शिक्षा देते हैं हरिदास ठाकुर को दंडित करते हुए। इसलिए मर्यादा हमें हमेशा अपने भक्ति में आचरण में याद रखनी चाहिए। और वो मर्यादा और भी सिखाई दामोदर पंडित कैला प्रभु वाक्य दंड, चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित भी एक ऐसे डिवोटी थे जो निरपेक्ष थे, किसी का वो पक्षपात नहीं करते थे। सारा गौड़ीय भक्त जो भक्त लोग थे वे दामोदर पंडित से डर के रहते थे क्योंकि वो सबके धज्जियां उड़ाते थे, डांटते रहते थे। कोई वैष्णव एटिकेट का पालन नहीं करता था उसकी वहां खड़े खड़े क्लास लगाते थे। तो तो वैसे किसकी क्लास लगाई उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वहां गंभीरा में रहते रहते एक छोटा सा बालक चैतन्य महाप्रभु को मिलने रोज आता था, उनके पास जाता था। अरे दामोदर पंडित हमेशा मना करते थे उस बच्चे को। ओडिया एक ब्राह्मण था, उनका वो पुत्र था और उनका पिता नहीं था, और वो बालक बहुत सुंदर था और उसका आचरण भी बड़ा अच्छा था। तो चैतन्य महाप्रभु उस बालक के साथ कभी कभी प्रसाद देते थे, बातें करते थे, तो उस छोटे से बालक के साथ बहुत घनिष्ठता हो गई। तो उस बच्चे को ये दामोदर पंडित कहते थे मत आओ यहाँ, लेकिन उस बालक को महाप्रभु को जब तक नहीं देखे तब तक चैन नहीं पड़ते थे। तो फिर एक दिन वो जो दामोदर पंडित है वो दुखी हो गए और उन्होंने देखा इतना मना करने पर भी वो बालक नित्य रूप से आता भी है और चैतन्य महाप्रभु भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब ये दामोदर पंडित को सहा नहीं गया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास गए और वो बोलने लगे कि सारे लोग आपको बहुत बड़ा शिक्षक कहते हैं, गोसाई कहते हैं आपको, गोसाई कि आप बहुत बड़े शिक्षक हो, उपदेश देते हो दूसरों को, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप किस प्रकार के शिक्षक हो। उन्होंने कहा आप तो गुरु या आचार्य के नाम से विख्यात हो, लेकिन सारा जो जगन्नाथपुरी है आपके अपयश की और आपकी निंदा कर रहा है। हाँ, निंदा करेगा तो आपको कैसे धक्का लगेगा, ऐसा वो महाप्रभु को बोलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु को वो कहते, महाप्रभु कहते कि क्या ऐसा हुआ जिसके कारण तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पंडित हया मने के ने विचार न कर, रांडी ब्राह्मण बालक के प्रीति के ने कर। कहते हैं आप इतने बड़े सन्यासी हो, इतने विद्वान हो, थोड़ा सा विचार करो ना, जिस छोटे से बच्चे से आप इतना प्रीति रखते हो, आप जानते हो किसका बालक है, उसकी जो माँ है उसको पति नहीं है, और आप उससे इतना अधिक संबंध रख रहे हो जिसके कारण सारे लोग क्या कहेंगे आपको, सन्यासी होकर भी आप किससे संबंध रख रहे हो एक प्रकार से, उस बालक की जो माता है उनके साथ। तो महाप्रभु को दामोदर पंडित कहते हैं यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती तहार तथापि तहार दोष सुंदर युवती। महाप्रभु को दामोदर पंडित कहते हैं उस ब्राह्मणी का दोष नहीं है, वो बहुत बड़ी तपस्वी है, लेकिन दोष क्या है, वो युवती है और बहुत सुंदर है। तुम्हें हाँ परम युवा परम सुंदर लोके काना कानी बातें देह अवसर। वो भी एक युवती है, परम सुंदरी है, और तुम भी एक युवक और बहुत सुंदर हो। तो तुम महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु को दामोदर पंडित कहते हैं आप इस प्रकार से उस बालक की बहुत घनिष्ठता स्थापित करोगे तो जगन्नाथपुरी में सारे लोग आपस में क्या करेंगे, बातें करेंगे, जिसके कारण संन्यास धर्म की हानि हो सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित को कहते हैं कि तुम वास्तव में मेरे असली मित्र हो, तुम मुझे क्या सिखाते हो, सदाचार पूर्ण आचरण कि तुम शिक्षा ले रहे हो। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए चैतन्य चरितामृत को कहा जाता है फिलॉसफी इन एक्शन। फिलॉसफी हम सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्शन में कैसे लाए या कैसे लाए गए उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो उसका ज्ञान किसमें भरा पड़ा है, चैतन्य चरितामृत में, और चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद अपने आचरण से ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ ये तो दो लीलाएं हैं जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज संक्षेप में करते हैं कि किस प्रकार से छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु दंडित करते हैं उनके इस आचरण के कारण, और वो सबके लिए शिक्षा है, मर्यादा का पालन हम अपने आश्रम में रहते हुए करें, चाहे वो स्त्री हो
या पुरुष हो, युवा हो या वृद्ध हो, हरिवंश स्वयं चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित उनको करेक्ट कर रहे हैं। तो महाप्रभु नहीं बोल रहे तुम्हें क्या अधिकार है, हा? तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उस करेक्शन को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, तो उस प्रकार से हमें भी सुधरने के लिए डिवोटीज यदि बोलते भी हैं तो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित से हमेशा सीखते थे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत के